सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, हम सब लोग आध्यात्म जीवन की चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में आज इस विषय पर हम विचार करें कि जो सत्य है वह अपने से बहुत दूर मालूम होता है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वह अपने को निकट मालूम होता है। जिससे हमारा त्रिकाल में भी नित्य संबंध नहीं है वह अपने को प्राप्त हुआ जैसा प्रतीत होता है, और जो सदा सदा से अपने में विद्यमान है, जिससे संबंध कभी छूटा ही नहीं, वह अपने को अत्यंत रहस्यमय मालूम होता है। एक समस्या है हमारे आपके सामने। इस समस्या का समाधान सत्संग के प्रकाश में हम लोगों को करना है। अहम रूपी अणु की रचना पर विचार करना बहुत ही सहायक होता है। शरीरों की रचना हुई है भौतिक तत्वों से और मैंपन की रचना हुई है अलौकिक तत्वों से। श्री महाराज जी की वाणी है, एक जगह पर बातचीत के सिलसिले में कहा उन्होंने कि गेहूं उपजा खेत में और सिवार उपजी जल में। मैं कहां उपजा, बताओ कोई स्थान, जल में कि थल में, कहां पर मैं की उत्पत्ति हुई। सोचने से तो ऐसा लगता है कि जल में से या थल में से मैं नहीं निकला। श्री महाराज जी कहते कि जल से, थल से और वायु से मैं की रचना हुई होती अगर, तो आज के वैज्ञानिक युग में ऐसे यंत्र बना लिए जाते जिनसे बहुत से मैं का उत्पादन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारा आपका व्यक्तित्व जो है उसमें शरीरों का भाग भौतिक तत्वों से बना हुआ है और मैंपन जो है वह अलौकिक तत्व से रचा गया है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि शरीरों के साथ रहते हुए भी मनुष्य के भीतर अलौकिक जीवन की मांग होती है, अनंत तत्व की जिज्ञासा रहती है। इसलिए यह मैंपन जो है हमारा आपका, यह भौतिक तत्वों का रचा हुआ नहीं है, अलौकिक तत्वों से रचा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, यह सब इसी सत्य के प्रकाश में होना चाहिए था। इस सत्य का प्रभाव अगर हम लोग ग्रहण करें तो हमें यह सत्य भी मान लेना चाहिए कि भाई शरीर की आवश्यकता संसार से पूरी होगी, परंतु मैं की आवश्यकता की पूर्ति में संसार सहायक नहीं हो सकता। कारण कि शरीर और संसार की जाति एकता है। किसी शरीर विज्ञान के जानकार व्यक्ति से आप पूछिए और आपके शरीर के भीतर की धातुओं की वह जांच करे, तो कोई डॉक्टर कहेगा कि शरीर में लोहा कम हो गया, कोई कहेगा कि इसमें शक्कर की मात्रा बढ़ गई। ये सब धातुएं जो शरीर के भीतर हैं और जिनकी क्षति वृद्धि की चर्चा आप करते हैं, ये धातुएं संसार की हैं, संसार के बाहर की नहीं है। इसका मतलब यह है कि शरीर का विश्लेषण अगर कीजिए तो शरीर में संसार ही मिलेगा, संसार के परे का धातु नहीं मिलेगा। समझ में आता है जी? अब मैं का विश्लेषण करो कि उसमें क्या है, उसमें संसार की धातु नहीं मिलेगी। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये पांच तत्व मैं में नहीं मिलेंगे। मैं क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस पर जिन महापुरुषों ने विचार किया उन्होंने विचार की सीमा के भीतर आने वाली सब बातों को अस्वीकार किया। मैं मिट्टी नहीं है, मैं पानी नहीं है, मैं हवा नहीं है, मैं अग्नि नहीं है, मैं पृथ्वी नहीं है, इस तरह सब धातुओं को इनकार कर दिया कि मैं में यह सब नहीं है। जो नहीं है उसको नकार देने से, अर्थात जो नहीं है उसको अस्वीकार कर देने से जो है उसका अनुभव हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है और समस्या हल हो जाती है। एक रास्ता यह है। दूसरा है विश्वास का मार्ग, जो आस्तिकवाद कहलाता है। व्यक्तित्व की रचना में विचार भी एक अनिवार्य तत्व है, तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास भी जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। उसको भी हटाया या मिटाया नहीं जा सकता। किसी मनुष्य के व्यक्तित्व को लेकर आप विचार करें तो उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास ये सब घटा दीजिए तो उसको आप मनुष्य नहीं कह सकेंगे। अनिवार्य तत्व किसको कहते हैं? जिसको हटा दो तो संज्ञा समाप्त हो जाए। अब सोचिए, प्रेम भाव से शून्य आपने किसी मनुष्य को देखा है? अरे भाई, स्नेह देने की क्षमता उसमें न हो परंतु लेने की प्यास तो रहती है। इसका मतलब है कि बीज रूप से यह तत्व विद्यमान है। एक मनुष्य के व्यक्तित्व का एक अनिवार्य तत्व है कि उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास का पक्ष होता ही है। उसके बिना मनुष्य बनता ही नहीं है। इस आधार पर साधन की एक प्रणाली चलती है जिसमें यह माना जाता है कि शरीर के माध्यम से और इस संसार की सहायता से अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। अपनी आवश्यकता उस अनंत जीवन की है जिस पर मृत्यु की छाया न पड़ सके। अपनी आवश्यकता उस आनंद की है जो किसी अन्य पर आश्रित न हो। पराश्रय और परिश्रम से मिलने वाली चीज सुख कहलाता है, आनंद नहीं कहलाता। पराश्रय और परिश्रम से मिलने वाले सुखों का सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। इतने से अपने को संतुष्टि नहीं हुई। अपनी मांग उस आनंद की है जो पराश्रय और परिश्रम पर आधारित न हो। आंखों का सहारा लिए बिना दृश्य जगत के सुंदर दृश्य की सुंदरता का मजा आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कान की सहायता लिए बिना मधुर स्वर सुनने का सुख किसी को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो कानों का सहारा लेकर मधुर स्वर सुनने का सुख हम लेते ही रहेंगे, इस बात में हम लोग स्वाधीन नहीं हैं। जीभ में स्वाद की कलियां हैं, उसमें से स्वाद के रस निकलते रहते हैं, सलिवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। उनकी क्रिया के आधार पर सुस्वादु वस्तुओं के खाने का सुख व्यक्ति को मिलता है। यह सुख आप सदा के लिए लेते रहें, इसमें स्वाधीनता नहीं है। अनेक प्रकार की पराधीनता है, कहाँ तक मैं वर्णन करूं। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर इन्हें जानने में मैंने बहुत समय गंवाया। आपका समय इस विवेचन में मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ, अब इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। इसमें पराधीनता है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आगे बढ़ें। अपनी मांग में ऐसी बात है कि अपने को वह आनंद चाहिए जिसमें कि शरीर और संसार की पराधीनता लेनी न पड़े। परम स्वाधीन जीवन का आनंद अपने को चाहिए। इस मांग की पूर्ति शरीर और संसार की सहायता से नहीं हो सकती। अपने को ऐसा परम पवित्र प्रेम का रस चाहिए कि जो कभी घटे ही नहीं, कभी खत्म ही न हो और हम सदा ही उस रस की मस्ती में छके रहें। ऐसा परम पवित्र रस, ऐसा अनंत माधुर्य से भरा हुआ रस इस संसार में है भी नहीं और इस संसार की सहायता से ऐसे रस का अनुभव भी नहीं हो सकता। जिन साधकों को उस रस का मजा आया, जो उस रस में छके, वे शरीर और संसार को भूल गए, और जिन्होंने शरीर और संसार को पकड़कर रखा है, उनको वह अनंत रस मिला ही नहीं। इससे पता चलता है कि अपने को जो चाहिए वह शरीर और संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। अपने जीवन को देखिए तो सही, शरीर और संसार की सहायता लेकर हम लोगों में से किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 60 वर्ष और किसी ने 80 वर्ष बिताए। इतनी लंबी अवधि का अनुभव काफी है इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कि सचमुच मुझे जिसकी मांग है वह शरीर और संसार की सहायता से पूरी नहीं हो सकती। अतः निज स्वरूप का बोध और परम प्रेम का रस जगत की सहायता से नहीं मिल सकता। इस सत्य की स्वीकृति मात्र से साधकों के साधन पथ की बहुत सी बाधाएं सहज ही हट जाती हैं। साधक प्रचलित रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा अपनी मौलिक मांग की पूर्ति के लिए भी वह शरीरों की पराधीनता में आबद्ध रह जाता है। साधकों को साधन पथ पर स्वाधीनता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, सत्य को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष परिश्रम और पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः साधक यह सोचते हैं कि शरीर की ममता और संसार की कामनाओं का नाश करने के लिए भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा। ऐसा सोचना भ्रम है। ममता और कामना का नाश जीवन के सत्य को स्वीकार करने से होता है, परिश्रम से नहीं। ममता और कामना की उत्पत्ति सुख भोग की प्रवृत्ति से होती है, परंतु उनका नाश किसी प्रवृत्ति से नहीं होती है। कामनाओं की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि आपने इंद्रिय दृष्टि से दृश्य जगत को देखा और किसी चीज को पसंद किया कि यह बड़ी बढ़िया है। उस पसंदगी के कारण उसका चित्र आप में अंकित हो गया। जैसे खाने की कोई चीज पसंद की आपने, दुकानों में से बढ़िया बढ़िया सुगंधी आ रही है, खाने की वस्तु पक रही है, बिक रही है, आपके मन में उसको खाने की कामना उत्पन्न हो गई। उसको खाने का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह तो प्रकृति का विधान जाने। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। कभी पैसे नहीं होंगे, कभी टाइम नहीं होगा, कभी साथी ना पसंद करेंगे। सुख लेने के लिए विधान ने आपको अलाउ किया है या नहीं, यह तो विधान जाने। लेकिन अगर आपने पसंद किया कि यह तो बड़ी बढ़िया चीज है, मुझे मिल जाए तो खाने में बड़ा मजा आएगा, केवल इस पसंदगी के आधार पर आप में उसका राग अंकित हो गया। फिर जब आप ध्यान करने बैठे तो इष्ट के स्थान पर जिस वस्तु को आपने पसंद किया था उसका चित्र दिखाई देने लगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। बहुत साधारण स्तर का वैज्ञानिक विश्लेषण है, ऊंचा दर्शन मैं नहीं बोल रही हूँ। दुनिया में रहकर दिन रात इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं को हम लोग अपने भीतर स्थान दे रहे हैं, यह उसका परिणाम है। श्री महाराज जी कहते हैं कि भैया, सुखद प्रवृत्तियों में अपने को फंसाकर इन विकारों को आपने भीतर भीतर जमाया है, इनका नाश किसी प्रवृत्ति से नहीं होगा। ये विकार भी तुम्हारे भीतर जमे रहेंगे और इनके नाश के लिए साधना के रूप में कोई चित्र लेकर, कोई मंत्र लेकर, कोई अच्छा विचार लेकर उनका चिंतन करने बैठोगे तो वह चिंतन भी तुम्हारे भीतर अंकित होता रहेगा। दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रभाव अंकित रहेगा। मनुष्य में बड़ी भारी विलक्षणता है कि वह जिसको पसंद करता है वही उसके भीतर अंकित होता है। संसार के दृश्यों को पसंद किया तो उनका चित्र भी भीतर बन गया, और अब कुछ अच्छी बातों को पसंद करने लगे तो वे भी अंकित हो गईं। फिर जब साधक अपनी साधना में शांत बैठना चाहते हैं तो जो विकार अंकित हुए थे वे भी सामने आते हैं, और जो अच्छी बातें अंकित हुई हैं वे भी सामने आती हैं। फिर साधक घबराते हैं कि हाय क्या करें, भीतर से विकार तो नाश हुए ही नहीं। अरे भाई, आपने दोनों को पसंद किया तो दोनों वहां मौजूद हैं। एक को रखना चाहते हो और दूसरे को हटाना चाहते हो तो होगा कैसे? पहले पसंदगी मिटाओ, तब न विकार मिटेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, भीतर के जो विकार हैं उनको नाश करने के लिए किसी क्रिया का सहारा मत लो। क्रिया का सहारा लेने का मतलब है शरीर का सहारा लेना, और शरीर का सहारा लेने का मतलब है कि फिर तुम पराधीन हो गए। सोचो, तुम चाहते हो परम स्वाधीन परमानंद, और उसकी साधना करते हो शरीरों के अधीन होकर। इसी कारण सफलता नहीं मिलती। इस फेर में कभी मत पड़ना। कितनी सच्ची बात है, आप देखिए। जब मैं साधक समाज को देखती हूं कि शरीरों का सहारा लेकर विविध प्रकार की क्रियाओं को लेकर शरीरों से परे और शरीरी जीवन की स्वाधीनता पसंद करते हैं तो बड़ा दुख होता है। शरीर का सहारा लेकर साधन करोगे और शरीरी जीवन चाहोगे, कैसे होगा? होता ही नहीं है। बाहर का दुख द्वंद थोड़ा कम हो जाता है, समाज में कुछ अच्छा स्थान मिल जाता है, लोग कुछ भली दृष्टि से देखने लगते हैं, जीवन में से बहुत सी बुराइयां निकल जाती हैं, तो व्यक्तित्व कुछ अच्छा बन जाता है। लेकिन जो अंतिम बात है वह पूरी नहीं होती। इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा कि केवल सत्य की स्वीकृति मात्र से अहम में परिवर्तन होता है। इसको आप प्रयोग करके देख लें, सत्य की स्वीकृति मात्र से। कौन सा सत्य? ग्रंथ में लिखा है वह नहीं, गीता में लिखा है वह नहीं, वेद शास्त्र में लिखा है वह नहीं, उसके तो हम अभी अधिकारी भी नहीं हुए हैं। फिर कौन सा सत्य? शरीरों की सहायता लेकर जगत में हमने अपने को संतुष्ट करना पसंद किया। मेरा ही अनुभव है कि ऊंची से ऊंची सुखद परिस्थिति में भी मुझे संतोष नहीं हुआ। यह आपकी अपनी जानी हुई बात है। यह ग्रंथ का सत्य है कि आपका अनुभव है? आपका अनुभव है। जो अपने अनुभव का आदर करता है वह वेदवाणी का आदर कर सकता है, क्योंकि आपके भीतर प्रकाश देने वाला स्वयं प्रकाश विद्यमान है। उसी का प्रकाश वेद में प्रकट किया गया है। वेद में जो प्रकाश प्रकाशित किया गया है, गीता रामायण उपनिषद में जो प्रकाश प्रकाशित किया गया है, उस प्रकाश का मूल स्रोत स्वयं प्रकाश परमात्मा आप में विद्यमान है। आपके व्यक्तित्व में जो कि सजीव है, उस प्रकाश का आदर होता है। अनुभूतियां कागज के पन्नों में नहीं होती हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व में होती हैं। अतः कागज के पृष्ठों से अधिक महत्वपूर्ण आपका व्यक्तित्व हुआ। इस बात को आप मानिए, अपने व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करिए। ग्रंथ में जो वाक्य लिखे हैं उन वाक्यों का अनुसरण करने से सत्य की अभिव्यक्ति आपके भीतर होगी। आपके अनुभव में आएगा और वह कभी न मिटने वाला आनंद आपके जीवन में आएगा, इसमें कभी संदेह मत करना। संत कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास शरीर है और तुम्हारे परिपार्श्व में संसार दिखता है। उस शरीर और उस संसार को आज तक तुम पकड़कर रख नहीं सके, लेकिन भूल से तुमने मरे हुए कुटुंबियों की ममता को अपने अंदर रख लिया। कुटुंबी चले गए और उनकी ममता तुम्हारे भीतर रह गई, उनकी आसक्ति तुम्हारे भीतर रह गई। सरकार का दिया हुआ बड़ा भारी पद मिला था, सरकार ने उसे वापस ले लिया, पद चला गया, लेकिन उस पद के अभिमान की बू अपने भीतर है। जब बातचीत होती है तब रिटायर्ड व्यक्ति अपना परिचय देते हैं कि पहले हम अमुक पोस्ट पर काम करते थे। शिवसन जी महाराज कभी आनंद की मौज में होते तो ऐसे ही पुकारते, आओ राय बहादुर साहब, आओ मजिस्ट्रेट साहब, आओ जज साहब, ऐसे करके संबोधित करते और फिर उसके बाद खूब हंसते और कहते कि देखो भाई, अगर तुम्हारे भीतर पद की आसक्ति रह गई है थोड़ी बहुत, तो मैं इसी पद के संबोधन से पुकार रहा हूं, अब से रागनिवृत्त हो जाओ। संसार आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया, परंतु संसार की आसक्ति अपने भीतर रखकर व्यक्ति फंस जाता है। संसार सदा ही छूटा हुआ है, फिर हम किसमें फंस गए हैं? संसार में नहीं फंस गए। हवा किसी को नहीं पकड़ती है, धरती किसी को नहीं पकड़ती है, समाज किसी को नहीं पकड़ता है, संसार कभी किसी को नहीं पकड़ता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं, उसमें कर्तापन है ही नहीं। मैंने अपनी भूल से अपने भीतर संसार की ममता कामना को रख लिया तो मैं स्वयं फंस गई हूं। अब प्रियजनों का वियोग सता रहा है, अब सुख सुविधाओं का निकल जाना सता रहा है, यह सब हो रहा है। यह तो हो गई बीमारी की बात, इसको अब छोड़ दिया जाए। इसका इलाज यह है कि संसार की ममता और कामना का त्याग कर दिया जाए। जिसको जीवन में ऐसा अचल आधार चाहिए कि जिसका आश्रय लेकर व्यक्ति सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय हो सके, उसको आस्था श्रद्धा विश्वास के आधार पर इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा है, सदा के लिए है, सभी के लिए है, अपने में है, अभी है और अपना है। परमात्मा है एक बात हो गई, सदा के लिए है, सर्वत्र है, सभी के लिए है, अपना है, अपने में है, अभी है। हर वाक्य का बड़ा भारी अर्थ है, लेकिन उसकी व्याख्या किसी दूसरी बैठक में होगी। अभी तो केवल उस पथ का प्रतिपादन करना है मुझे। विश्वास पथ के साधकों के लिए भी बहुत ही सहज बात है कि वे अपने जीवन की आवश्यकता को देखकर संतों, भक्तों और सद्ग्रंथों के वाक्यों में विश्वास करके उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस तरह से दो भाग हो जाएंगे, एक यह कि शरीर संसार के काम आ जाएगा और दूसरा यह कि स्वयं मैं परमात्मा के प्रेम के रूप में बदल जाएगा। इस प्रकार बहुत ही सहज से जो नहीं है उसका प्रभाव अपने में से निकल जाता है और जो सदा सदा से अपने में विद्यमान है उसकी सरसता, उसकी मधुरता अपने में भर जाती है। जो संसार का है वह संसार में जुट जाएगा और जो परमात्मा का है वह परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। लौकिक आनंद भी हो गया और पारलौकिक आनंद भी हो गया। शरीर को जो चाहिए वह शरीर को मिल गया और अपने को जो चाहिए वह अपने को मिल गया। देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को परम प्रेम की मधुरता चाहिए, अपने को अनंत रस चाहिए। जो अपने हृदय में परम प्रेम की आवश्यकता अनुभव करते हैं वे रस के लिए संसार की ओर नहीं देखते हैं। इस बात को स्वीकार करने के लिए गुफा में नहीं प्रविष्ट होना होगा, जमीन में नहीं घुसना होगा, आकाश में नहीं उड़ना होगा। अभी यहीं बैठे बैठे आप इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। सत्य जो होता है वह जगत के अधीन नहीं होता। बड़ा भारी भ्रम है कि जब सत्य की याद आती है तो आदमी सोचने लगता है कि अब हिसाब बंद करो, अब दुकान बंद करो, परिवार से छुट्टी मांगो। सत्य का जो प्रश्न है उसमें मनुष्य को पराधीन नहीं बनाया गया, उसके लिए किसी परिस्थिति विशेष की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, परंतु लोगों को भ्रम रहता है। आप कैसे सोचते हैं कि भूखे रहने की ताकत आएगी तब सत्य खोजेंगे, नंगे रहने की शक्ति होगी तब सत्य खोजेंगे? भूखा नंगा रहना शरीर धर्म है, स्वधर्म नहीं है। शरीर धर्म में सत्य बंधा नहीं है। सत्य किसे मिलना चाहिए? शरीर निरोग हो तो उसको मिलना चाहिए और बीमार हो तो उसको भी मिलना चाहिए। जिसके पास धन संपत्ति हो उसको भी मिलना चाहिए और जिसके पास धन नहीं हो तो उसको भी मिलना चाहिए। आप सोचिए तो सही। जगत में विषमता हो सकती है लेकिन सत्य के साम्राज्य में विषमता कैसे हो सकती है? इस प्रकार ये दो बातें आई सामने और आपके अनुभव के आधार पर आई। शरीर को हम संसार के बाहर नहीं ले जा सकते, इसके द्वारा संसार की जो सेवा बन सके सो करते रहो। जब तक शरीर मिटकर संसार में समा न जाए तब तक करते रहो। लेकिन अपनी जरूरत है और शरीरी आनंद की, परम स्वाधीनता के आनंद की, परम प्रेम के रस की। शरीर की जरूरत ज्यादा नहीं है। अपने भीतर संग्रह के दोष ने शरीर की जरूरतों को इतना भारी भरकम बना दिया कि अपने लिए फुर्सत ही नहीं है। शांति मेरी अपनी मांग है, स्वाधीनता का आनंद मेरी अपनी मांग है, परमात्मा का प्यार मेरी अपनी मांग है, लेकिन मांग पूरी करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। यह अपनी भूल आपकी दृष्टि में आ रही है कि नहीं? इसको इसी जगह पर बैठे बैठे मिटा सकते हैं कि नहीं? मिटा सकते हैं। जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, झंझट इतना कम हो जाएगा कि भीतर का आराम आपको बहुत बलिष्ठ बना देगा। प्रयोग करके देखो, इस सत्य को स्वीकार करके जीवन में से शरीर का महत्व निकाल दो, वस्तुओं का महत्व निकाल दो। ये सब महत्व की बातें नहीं है। अपने दोषों को मिटाने के लिए शरीर और संसार की वस्तुओं का सेवा में सदुपयोग करने का दायित्व तो अपने पर आ गया है। अगर हमने शरीर और संसार को महत्व न दिया होता तो यह भी दायित्व तो अपने पर नहीं आता। अपने सामने दायित्व तो आ गया है कि संग्रह की हुई संपत्ति को निर्धनों की सेवा में लगाना जरूरी हो गया। धन के लोभ और संग्रह की बीमारी को मिटाने के लिए यह इलाज सामने आ गया। अगर मुझ में आसक्ति नहीं होती तो मेरे सामने सेवा की परिस्थिति भी नहीं आती, हम पहले ही उसके पार होते। श्री महाराज जी कहते हैं कि जल्दी जल्दी बहती गंगा में हाथ धोकर शुद्ध हो जाओ। धन आवे तो आदर करके स्वागत करके ले लो। धन संपत्ति चीज सामान जो परमात्मा ने पैदा की है वह बुरी नहीं है। आवे तो आदर करके ले लो, लेकिन अपने लिए रखने की मत सोचना, नहीं तो फंस जाओगे। जिसके लिए है उसको देते जाओ, खुले हाथ से देते जाओ, बीमारी का इलाज हो जाएगा, निर्लोभ हो जाओगे। दुनिया से जाने से पहले शरीर और संसार तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा, बहुत आराम मिलेगा। धन के ज्यादा और कम का अंतर नहीं होता है, कोई 5 रुपए में भी फंस जाता है, कोई 5 अरब में भी नहीं फंसता है। कम ज्यादा की बात नहीं है, बात फंसावट की है। किसी समय मेरे ध्यान में आया कि दुनिया में अपना कहलाने लायक कोई दिखता नहीं है। महाराज जी से मैंने आकर कहा कि महाराज जी, इस संसार में कोई अपना कहने के लायक दिखता नहीं है और बिना किसी को अपना बनाए मुझसे रहा नहीं जाता है, तो क्या करूं? श्री महाराज जी ने कहा, देवकी जी, एक तो है मेरा मित्र जो सदा सदा के लिए तुम्हारा होकर रहता है। लाली, तुम भूल गई हो उसको। अगर तुम पसंद करो तो मैं उससे सगाई करा दूं। मैंने कहा, हाँ महाराज, कराइए। बिना लगन के कौन रह सकता है? अपने प्रेम का आधार अवश्य चाहिए। अतः जब मैंने हाँ किया तो कठिन प्रश्न सामने आ गया। महाराज जी कहने लगे कि लाली, एक काम करना पड़ेगा। झोली में जो तुमने भरकर रखा है, डिग्री का अभिमान, धन का अभिमान, कुटुंबी जनों का सहारा और सच्चरित्र व्यक्तित्व और कर्तव्यनिष्ठ होने का अभिमान, जितना तुमने झोली में भरकर रखा है सब पहले झाड़ दो। पहले झोली को खाली कर दो, तब मैं सगाई की बात करूं। संत के कहने से मैंने मान लिया हो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मेरे भीतर का प्रश्न इतना उग्र था कि संत को करुणा आ गई, भगवंत को करुणा आ गई और दोनों ने मुझको संभाल दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। यह उदाहरण है किस बात का? इस बात का कि या तो तुम अपने अनुभव के आधार पर असत को अस्वीकार करके अकेले हो जाओ, तब तुम्हारे भीतर वह आनंद प्रकट हो जाएगा, अथवा तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब विश्वास करके उस परमात्मा के समर्पित कर दो और उसको अपना मान लो, उसी को जीवन का आधार बना लो, तो उसका परम प्रेममय रस जो है वह तुम्हारे भीतर ही प्रकट होकर सारी थकान मिटा देगा, सब विकारों को धो देगा। जन्म जन्मांतर से जो अहम का एक आभास अपने पर लगा रहता है उसको भी मिटा देगा और सब प्रकार से भव रोगों से मुक्त करके अपने प्रेममय रस से तुमको भरपूर कर देगा। यह जीवन का एक क्रम है, एक मेथड है। गुरु की वाणी में विश्वास कर लो, वेद वाणी में विश्वास कर लो, गीता रामायण के वाक्यों में विश्वास कर लो, संतों भक्तों के वाक्यों में विश्वास कर लो। बिना विश्वास किए उस सत्य की स्वीकृति अपने को प्रभावित नहीं करती है। विश्वास करना जरूरी हो गया, क्योंकि जीवन की आवश्यकता बताती है कि बिना किसी अविनाशी आधार के, बिना प्रेम के, बिना सगाई के, बिना लगन के जीवन कोई जीवन ही नहीं मालूम होता है। संसार में अपना कहने लायक कुछ है नहीं, और जो अपने लायक है वह ऐसा विलक्षण है कि लौकिक कल्याण भी करा सकता है, पारलौकिक कल्याण भी करा सकता है। अपना ही रस देकर हमको रसमय बना सकता है, वह सेवक हो सकता है, स्वामी हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, गुरु हो सकता है और शिष्य भी हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारी ओर से जो संबंध उनके प्रति पसंद किया जाता है वह उनको इतना प्रिय है कि वे सब स्वीकार कर लेते हैं, सब प्रकार से भरपूर कर सकते हैं। संसार की नश्वरता का परिचय एवं अविनाशी के प्रेम की प्यास, ये दोनों ही बातें मनुष्य के जीवन में हैं। सत्संग में आने से आप में ये बातें पैदा नहीं हुई, पहले से ही थी। संतुष्टि के बिना असंतोष का भार ढोना किसी भी सजग व्यक्ति को पसंद नहीं है। यह बात मेरे कहने से मालूम हुई कि पहले से आप जानते हैं, पहले से आप जानते हैं। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि प्रभु ने कितनी कृपा की है तुम पर, प्रतिकूलता के रूप में दर्शन दिया है। तुम्हें तो जल्दी से जल्दी साधना में लग जाना चाहिए। अनुकूलता में तो आदमी थोड़ा शिथिल भी हो जाता है, प्रतिकूलता में और जोरदार चेतना जग जाती है। तो साधना के प्रतिकूल संसार बन जाए यह संभव नहीं है। साधना के लिए कोई परिस्थिति है ही नहीं। इस बात को सदा के लिए भूल ही जाओ, निकाल ही दो जीवन में से। देखो, संसार कभी साधना के लिए बाधक नहीं हो सकता। प्रतिकूलता कभी आपको परमात्मा से दूर नहीं कर सकती। किसी संत के मुख से मैंने सुना है कि बच्चे को गोद में लेना हो, दूध पिलाना हो, उसके भोजन का समय हो गया हो और वह खिलौनों में खूब उलझा हुआ हो, मस्त हो, तो करुणामयी माँ क्या करती है, आ करके जल्दी जल्दी उसके सामने के खिलौनों को हटा देती है। तब वह रोता है, चिल्लाता है और माँ बच्चे को उठा लेती है। ऐसे ही बहुत बार हमारे परम हित चिंतक, हमारे आपके परम हितैषी हमको अनुकूलता के सुख में फंसा हुआ देखकर अनुकूलता के सब खेल तमाशे एक सेकंड में बिगाड़ कर रख देते हैं। मैं क्या बताऊं, जितना ही मैं सृष्टिकर्ता से नाराज थी उतना ही उन्होंने मुझे अपना प्रशंसक बनाया। मेरी हार हो गई, उनकी जीत हो गई। मेरी शिकायतें खत्म हो गईं। जैसे जैसे जीवन का सत्य प्रकाशित होता चला जाता है, आंखों के सामने से अंधकार का पर्दा हटता चला जाता है, उतना ही अधिक उनकी महिमा, उनकी करुणा से मेरा जीवन अभिभूत होता जाता है। मैं सोचती हूँ कितनी कृपा है तुम्हारी कितना रस है तुम्हारे में, कितना हित चिंतन है मेरे लिए, बड़ा बढ़िया जीवन है। आप मानव जीवन की इस महिमा को स्वीकार कर ही लीजिए कि जीवन दाता ने हम लोगों को अनंत आनंद और परम प्रेम के लिए परिस्थितियों पर आश्रित नहीं किया है। मान ही लो इस बात को, और अगर किसी को संदेह लगे तो आइए बैठकर विचार विमर्श कर लें। संदेह है नहीं, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि असाधन काल में जो हमारी दशा रहती है वह भूल का परिणाम है। सत्संग के प्रकाश में इस भ्रम का निवारण हो जाता है। आप देखिए असाधन काल में क्या था कि नित्य विद्यमान परमात्मा अपने से बहुत दूर मालूम होता था, और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है वह संसार अपने निकट मालूम होता था। उस भ्रम के निवारण के बाद अब क्या हो गया कि नाशवान का प्रभाव अपने पर से उतर गया और नित्य विद्यमान परमात्मा की विद्यमानता अपने अनुभव में आ गई। उनके प्रेम का रस जीवन में प्रवाहित हो गया तो यह मानव जीवन की सफलता है। अब शांत विश्वास करने योग्य दो ही वस्तुएं हैं, सर्वसमर्थ प्रभु की अहेतु की कृपा और अपना कर्तव्य। और जानने योग्य दो ही वस्तुएं हैं, प्राप्त योग्यता का सदुपयोग और अपना लक्ष्य। इन चारों के अनुरूप जीवन बना लो। पश्चाताप करने वाला पापी अभिमानी योगी से आगे निकल जाता है, क्योंकि प्रभु को दीन प्यारे हैं। अतः आस्तिक प्राणी के जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। मानव जीवन का सर्वोच्च विकास है संपूर्ण व्यक्तित्व में प्रेम की अभिव्यक्ति, सबसे ऊंची बात है। प्रारंभिक दिनों में जब मुझे विकसित जीवन की अभिलाषा जगी थी तो बचपने में ऐसा ख्याल में आया कि शरीर बहुत
स्वस्थ होना चाहिए और खूब पढ़ाई लिखाई करके शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क को खूब विकसित करना चाहिए। तो मैं ऐसा समझती थी कि शारीरिक स्वास्थ्य खूब ठीक रहे और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट खूब बौद्धिक स्तर पर विकास हो जाए तो जीवन बहुत सुखी होता है और ये व्यक्तित्व का विकास कहलाता है। ऐसे ध्यान में था और जैसा ही ध्यान में था उसी प्रकार से खूब चेष्टा करके शरीर को ठीक और बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतना ही संपूर्ण जीवन नहीं है, क्योंकि उतने में संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा लगा कि जैसे अभी और बहुत कुछ बाकी है। आज आप भाई बहनों की सेवा में यह निवेदन करते हुए बड़ा हर्ष है मुझे कि मरणशील शरीर को साथ में लेकर बौद्धिक सीमा को भी साथ में लेकर इन इन सीमाओं के सहित इस धरती पर रहते हुए भी आप सभी भाई बहन उस असीम अनंत के अनंत प्रेम के पात्र हो सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और संपूर्ण व्यक्तित्व का जो तत्व है वह प्रेम के धातु में परिवर्तित हो जाए, यही इसका सर्वोच्च विकास संत जन मानते हैं, अनुभवी जन मानते हैं। स्वामी जी महाराज के साथ जय कृष्ण मूर्ति जी की एक बार बातचीत हो रही थी तो महाराज जी ने उनसे कहा कि आप हर बातों का निषेध करते जाते हैं, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो अंत में क्या आप शून्य को स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, शून्य नहीं है, लाइफ है। तो महाराज जी बहुत प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि भैया जिसको आप लाइफ कहते हैं उसको अगर मैं भगवान कहता हूँ तो आपको इतराज तो नहीं होना चाहिए। तो अंतिम बात तो वो है। और अब आखिरी दिनों में जय कृष्ण मूर्ति जी की जो किताब निकली है उसमें ये लिखा है उन्होंने कि प्रेम की अभिव्यक्ति ही मानव जीवन का सर्वोच्च विकास है। तो विचारक गण भी जिन्होंने परमात्मा का नाम नहीं लिया, जो ईश्वर को मानकर चलने वाली पद्धति की चर्चा ही नहीं करते हैं, उन्होंने भी असत्य का निषेध करते 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 सत्य की अभिव्यक्ति में सबसे ऊंची उपलब्धि प्रेम की अभिव्यक्ति को ही माना। तो इतनी बढ़िया बात है ये। अब अपनी वर्तमान दशा को हम लोग देखें, क्योंकि साधना की दृष्टि से विचार करना है और जो हमारे जीवन का सबसे ऊंचा और अनमोल अविनाशी तत्व है उसके विकसित होने तक हम लोगों को पहुंचना है। केवल चर्चा नहीं करनी है, केवल इस बात को जान लेने मात्र से वर्तमान की समस्याएं हल नहीं होंगी कि मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च विकास प्रेम तत्व है। ठीक बात है। तो अब देखना पड़ेगा कि अपनी वर्तमान दशा क्या है और यह निश्चय करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा कौन सी ऐसी साधना को अपनाना है, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करना है कि वर्तमान दशा की जो अप्रिय बातें हैं उनका अंत हो जाए और कभी न मिटने वाला कभी न घटने वाला प्रेम तत्व अभिव्यक्त हो जाए। इस ढंग से जीवन के संबंध में विचार करना है। तो वर्तमान दशा कैसी है? वर्तमान दशा ऐसी है कि प्रेम हम सब लोगों को पसंद आता है और प्रेम की सरसता में बहुत प्रकार की तकलीफों को हम सब लोग भूल भी जाते हैं और सहन भी कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। फिर भी परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय कुछ दूसरी बातें इस प्रकार से हमारे जीवन में घुली मिली हुई हैं कि अनेक अवसरों पर हम संकल्प पूर्ति को प्रधानता देकर प्रेम के आदान प्रदान को गौण बना देते हैं। तो कटुता भले आ जाए लेकिन मैं जो चाहूं सो जरूर होना चाहिए। बहुत ही घनिष्ठ संबंध संसार में जिसको हमने माना, वो संबंध भले टूट जाए लेकिन मेरी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए। तो संकल्प पूर्ति के लालच में पड़कर, धन के लोभ में पड़कर, देह के अभिमान में फंसकर, क्रोध के आवेश में आकर हम सब लोग प्रेम तत्व के विकास से वंचित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि संकल्प पूर्ति का सुख जो है और अहम के अभिमान की सुरक्षा करने का एक दंभ जो है, वो तो जीवन में शुष्कता, कठोरता, नीरसता उत्पन्न कर देता है। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, इनको तो मैंने डाउन करके दिखा ही दिया, हमारी जो बात थी सो तो पूरी हो ही गई, बहुत ठीक है भाई। अभिमान थोड़ा और पोषित हो गया, व्यक्तित्व के अभिमान के पोषण में हृदय का रस स्रोत सूख गया, हृदय की कोमलता कठोरता में बदल गई। इस पर उस समय ध्यान नहीं गया, थोड़ी देर के बाद जब वह आवेश ठंडा हुआ तो भीतर सूना सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अब और कुछ करने की आवश्यकता आरंभ हो रही है, अब चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे 2 बरस पहले एक सज्जन मिले, 30-32 वर्ष की उम्र है, बहुत ही जीनियस आदमी, बहुत असाधारण मेधावी व्यक्ति, बड़ा अच्छा इंजीनियर, अमेरिका में काम करते थे, लगभग 30,000 तो उनका मासिक वेतन था, इतना बड़ा काम वो लड़का करता था। मिला मुझे, बातचीत हुई, उनके माता पिता आए, सब लोगों ने कहा कि इसकी पत्नी से बनी नहीं और इन्होंने विदेश में जितना भी कारोबार फैलाया था, जो भी कुछ किया था, सब छोड़ छाड़ करके, नौकरी भी छोड़ करके हिंदुस्तान आ गए और ये तो अब केवल साधु संगति और साधना में रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सत्संग में आते रहे, सुनते रहे, विचार करते रहे, और बहुत ही शांत और स्नेही स्वभाव का लड़का। मुझे इतना दुख होता था उस भले आदमी की तकलीफ को देख करके। धीरे धीरे करके उनके घर का, उनकी पत्नी का, उनका सब हालचाल मालूम हुआ। तो अब कुछ दिनों के बाद मैं फिर गई थी उस दिशा में, गुजरात के हैं वो, भेंट हुई तो माँ और भाई परिवार के सब लोग कहने लगे कि पत्नी तो बहुत दुखी हो गई है, उस समय तो उसने क्लेम कर लिया और बहुत जितनी संपत्ति उसने मांगी इन्होंने दे दी, अब पछता रही है कि मैंने बड़ी भूल की, संपत्ति के लिए पति को छोड़ दिया, उनसे लड़ाई कर लिया, अब अच्छा नहीं लग रहा है, जीना बहुत भार हो रहा है, अब किसी भी प्रकार से हम लोग फिर जुट करके रह सकें तो अच्छी बात है। और ये सज्जन जो हैं, इन्होंने तो साधु जीवनी पसंद कर लिया, अब गृहस्थी की बात न सुनते हैं, न मानते हैं, न इस विषय पर कोई ध्यान देते हैं। तो पत्नी अलग दुखी है, उसका परिवार अलग दुखी है, माता पिता अलग दुखी हैं। देख देख करके मेरे ध्यान में आता है कि अहम के अभिमान में आकर अपनी योग्यता और प्रभु प्रदत्त शक्ति जो है, उस शक्ति को निजी मानकर व्यक्ति अनेक प्रकार के विकारों का शिकार बन जाता है, अपनी जिद पर आ जाता है, और उस समय थोड़ी देर संकल्प पूर्ति का सुख उसे अच्छा लगता है, कुछ समय के बाद फिर वही सूनापन, फिर वही नीरसता, फिर वही कठोरता। तो ऐसा जो अपना वर्तमान हाल है, उससे हम सब भाई बहनों को मुक्त होना है। संत जन सलाह देते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व की रचना ऐसे अलौकिक और ऊंचे तत्व से हुई है कि तुम संकल्प पूर्ति के फेर में पड़ करके कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लो और कितना भी यश कमा लो और कितने भी मित्र बना लो, जब तक तुम्हारे हृदय को वह अनमोल तत्व मिलेगा नहीं, तब तक वो किसी भी प्रकार से भरपूर नहीं होगा। तो वह अनमोल तत्व कौन सा है जिससे कि मानव हृदय को संतुष्टि मिलती है? तो वह अनमोल तत्व है प्रेम तत्व। जब हमने इस प्रेम तत्व का उपयोग इच्छाओं की पूर्ति के सुख के रूप में करना पसंद किया, वस्तुओं और व्यक्तियों पर इसको केंद्रित किया, तो परिणाम में मुझे आसक्ति मिली, असंतुष्टि मिली, अभाव मिला और नीरसता मिली, ये परिणाम हुआ। तो होना क्या चाहिए कि प्रेम का केंद्र वह हो सकता है जो सदा सदा के लिए हम लोगों का साथ दे सके। प्रेम का आधार वह बन सकता है जो सिवाय प्रेम के और कुछ न चाहे। सांसारिक संबंधों में प्रेम के मिठास में कटुता क्यों आ जाती है? इसलिए कि जो व्यक्ति एक दूसरे के प्रेमी बनते हैं वे अचाह नहीं होते हैं, उनके भीतर किसी न किसी प्रकार की कामना रहती है और वे अपना मन रखते हैं, अपना संकल्प रखते हैं, एक दूसरे से कुछ न कुछ चाहते हैं, प्रतिदान मांगते हैं, आशा रखते हैं, और जब उसमें बाधा पड़ती है तो प्रेम का मिठास घट जाता है, विरोध की कटुता बढ़ जाती है। तो संत जन कहते हैं कि प्रेम तत्व की मांग भी तुम्हारे में है और बीज रूप से यह अविनाशी तत्व तुम्हारे में विद्यमान भी है। भूल क्या हो गई कि जो इसका सही पात्र है उसकी ओर न लगा करके अन्य स्थानों पर, अन्य केंद्रों पर केंद्रित कर दिया, इसलिए तकलीफ हो गई। तो अब क्या करना चाहिए? तो यह होना चाहिए कि सचमुच प्रेम का पात्र तो वही हो सकता है जो सदा के लिए हमारा साथ दे सके और जो सिवाय प्रेम के और कुछ मुझसे मांगे नहीं और किसी प्रकार की आशा मुझसे न रखे। ऐसा तो वही हो सकता है भाई जो स्वयं अपने आप में सब प्रकार से पूर्ण है, वही ऐसा हो सकता है, दूसरा कोई और ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी मैं मन ही मन सोचती कि भाई अच्छी बात तो है परंतु मनुष्य के लिए कितनी कठिनाई हो जाती है। दिखाई देने वाला संसार दिखाई देता है और उसी से अनेक प्रकार की आशाएं हम करते हैं, आशाओं में निराशाएं मिलती हैं, फिर भी चेतना क्यों नहीं जगती कि इस नाशवान जगत में, इस निहसार दृश्य में तुमको संतुष्ट करने के लायक कोई तत्व नहीं है। इस बात का पाठ हम अगर पढ़ लेते तो अपने प्रेम भाव को केंद्रित करने के लिए परमात्मा को छोड़कर और किसी पर ध्यान जाता ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने सुझाव दिया, उन्होंने तो ऐसा भी सुझाया मुझे कि सचमुच मनुष्य का जीवन तो अपने आप में आनंदमय अस्तित्व ही है, प्रेममय अस्तित्व ही है, परंतु वह जो उद्गम है प्रेम का अनंत सागर, उस उद्गम से विमुख हो जाने के कारण भीतर में नीरसता भरी रहती है और नीरसता से पीड़ित होकर के व्यक्ति संसार की ओर देखता रहता है, जहां तहां दौड़ता रहता है, जिससे तिससे संयोग बनाता रहता है, सोचता है कि ऐसे कपड़े पहनो तो नीरसता मिट जाएगी, ऐसे भोजन का इंतजाम हो जाए तो जीवन सरस हो जाएगा, ऐसी मित्र मंडली मिल जाए तो नीरसता मिट जाएगी, इस प्रकार का काम मिल जाए तो समय कट जाएगा। तो जब मैं सुनती हूँ किसी के द्वारा कि भाई ऐसा ऐसा तो हम इसलिए करते हैं कि समय कट जाए, तो भीतर भीतर मुझे इतना दुख होता है। हाय रे मनुष्य, एक एक क्षण आनंदमय हो सकता था, एक एक क्षण अनंत परमात्मा को लाड़ लड़ाने में रस स्वरूप हो सकता था, और आदमी उन क्षणों को मुश्किल से काटने को सोचता है। बड़ा दुख होता है मुझे। भार ढोती हो कि भाई ऐसा ऐसा करो तो अच्छी तरह से समय कट जाए, अरे समय है कहाँ, किसके पास समय है भार ढोने के लिए? भार ढोने के लिए जीवन नहीं है भाई, भूल हो गई। भीतर से नीरसता का उद्वेग, नीरसता शब्द का प्रयोग मैं कर रही हूँ। कुछ भाई बहन ऐसे भी सोचते होंगे कि हमारे पास तो नीरसता है नहीं, अनुकूल परिस्थितियों में आदमी को भ्रम रहता है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर पता चलाना हो तो थोड़ी देर के लिए अपने को अकेले बंद करके देखो कि अपने आप के भीतर जो रस की लहरियां उठ रही हैं, उसमें अपना आपा डूब रहा है कि भीतर से जीव ऊब रहा है, मोनोटोनी लग रही है, घबराहट मालूम हो रही है, बाहर निकलने की इच्छा हो रही है, दृश्य जगत से संयोग बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, देखो तो पता चल जाए कि निरस्ता है कि नहीं है। तो यह तथ्य है हमारी वर्तमान दशा का, और अब इसका अधिक विस्तार न करके, जरूरत नहीं है अधिक विस्तार की, भुक्तभोगी हैं हम सब सभी। अब इससे मुक्त होकर जीवन को सरस बनाने का पुरुषार्थ अपने को करना चाहिए। तो एक बात पक्की हो गई कि जो कुछ भी प्रेम तत्व से भिन्न जो कुछ भी चाहेगा वो प्रेम दे नहीं सकेगा, और प्रेम तत्व से भिन्न जो कुछ भी चाहेगा वो प्रेम ले नहीं सकेगा। तो प्रेम का आदान प्रदान दो ही के बीच संभव है, एक है भगवान और दूसरे उनके भक्त। इन दोनों के अतिरिक्त और कहीं भी इस तत्व की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जहाँ जहाँ किसी भी प्रकार की कामना शेष है वहाँ प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो हम लोग आरंभ कहाँ से करेंगे? तो अनुभवी संतजन हैं, वो सलाह देते हैं, कहते हैं कि भूतकाल की भूलों को अब वर्तमान में याद मत करो। आज तुम्हारी समझ में यह बात आ गई कि मेरे भीतर प्रेम की प्यास है, और इस दृश्य जगत में, अदृश्य में, जाने हुए में, अनजाने हुए में, सब में एक अविनाशी अलौकिक नित्य विद्यमान है। तो उससे विमुख हो जाने के कारण हम अनेक प्रकार के कष्टों में फंस गए, और अब कष्ट का निवारण चाहते हो, हृदय की शुष्कता और कठोरता का नाश करना चाहते हो, सदा सदा के लिए उस परम प्रेमास्पद से अभिन्न होना चाहते हो, तो अब नया पुरुषार्थ आरंभ करो। वह कौन सा है कि भाई दिखाई देगा संसार तो उसकी सेवा करेंगे, परंतु अपने लिए अपना प्रेम पात्र, अपना परम प्रेमास्पद उस अनंत परमात्मा को ही रखेंगे जो प्रेम स्वरूप ही है। ये पहली बात हो गई। अब यहाँ किसी से कुछ मांगने की, चाहने की आवश्यकता नहीं है। इधर कोई कुछ है ही नहीं जो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो देने की बात है, जितना देते बने देते जाओ, जल्दी जल्दी दे डालो तो और जल्दी फुर्सत मिल जाए, जल्दी जल्दी ममता और कामना का नाश हो जाए तो हृदय की कठोरता जल्दी मिट जाए, और उस अनंत परमात्मा से जिससे कि हमारा सदा सदा का संबंध है, उससे केवल अपनी ओर से संबंध स्वीकार करने की बहादुरी करनी है। बड़ा भारी पुरुषार्थ है मानव जीवन का, सबसे बड़ा कि देखे हुए संसार को इनकार कर देना और बिना देखे हुए परमात्मा को सदा के लिए अपना मान लेना, और उसमें मैंने अपनी ओर से थोड़ा सा और जोड़ लिया। आगे चल के विस्तार तो सभी लोग कहते हैं, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि बड़ी भारी एक बहादुरी हम लोगों को करनी है कि देखे हुए जगत को अपने लिए इनकार कर देना कि मुझे नहीं चाहिए, और बिना देखे परमात्मा को सदा के लिए अपना मान लेना बिना किसी शर्त के, अनकंडीशन सरेंडर। सुना होगा या आपने, और साधु संतों ने कहा है, उसको मैं इसी के साथ जोड़ लेती हूँ। हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण हूँ, हे प्रभु मैं तुम्हें समर्पित हूँ, हे प्रभु मैं तुम्हारी दासी हूँ, हे प्रभु मैं तुम्हारा बालक हूँ। जो जी में आए सब नाते उनको पसंद है। गोस्वामी जी ने कह दिया ना, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो बावे। तो परमात्मा भी ये वाक्य हम लोगों से कहते हैं कि तू तो मेरा सदा सदा का है ही अपना। और महाराज जी मुझे समझाते तो कहते कि देवकी जी परमात्मा तो जानते ही हैं कि तुम उनकी अपनी हो, तुम्हारी ओर से कमी रह गई है तुम मान लो। तो वे सर्वज्ञ हैं, उनको यह बात मालूम है, वे जानते हैं। हम सब लोग अल्पज्ञ हैं, इस बात को जानते नहीं है, भूल गए हैं, तो मान ले। मानने के सिवाय भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए और कोई दूसरी साधना नहीं है, मानना ही होगा। मान लेने के बाद वही परमात्मा जाना हुआ भी हो जाता है और देखा हुआ भी हो जाता है, भेंट मुलाकात भी हो जाती है, और प्रेम तत्व की वृद्धि में तो ऐसी विलक्षणता है कि दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं तो पहचान भी खत्म हो जाती है। एक दिन एक संत प्रेम तत्व के बारे में कुछ कह रहे थे, तो कहते कहते कहने लगे कि कृष्ण के प्रेम में राधा कृष्णाकार हो जाती हैं और राधा के प्रेम में कृष्ण राधाकार हो जाते हैं। तो राधा जी सखियों से पूछ रही हैं राधा सखियों राधा कहाँ गई, ये कह रहे थे वो। क्या हो गया कि प्रेम के बाहुल्य में अपना जो एक एक भास है कि मैं हूँ, तो ये भास भी उस प्रेम में जाकर विलीन हो जाता है और दो दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। तो कृष्ण के प्रेम में राधा का अहम कृष्णाकार हो गया, तो राधे 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 पुकारती फिर रही हैं, और राधा के प्रेम में कृष्ण राधाकार हो गए, तो कृष्ण 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 पुकारते फिर रहे हैं। ऐसा होता है। महाराज जी ने सिद्धांत बताया तो कहा कि देखो भाई, संपूर्णता से अद्वैत जो है वह प्रेम तत्वों में जाकर ही सिद्ध होता है, उसके पहले नहीं। ये हिसाब बड़ा अनोखा है। प्रेम के साम्राज्य में गणित ऐसा है कि एक और एक मिलकर दो नहीं होते, एक और एक मिलकर एक ही होता है, ऐसा ये विलक्षण गणित है। तो उस अंतिम ऊंचाई तक हम भाई बहनों को पहुंचना है। आरंभ कहाँ से करें? आरंभ आज से करें। पहली बात क्या स्वीकार करें कि मेरा नित्य संबंध केवल परमात्मा से है। पहली बात, नित्य संबंध और किसी से नहीं है। माना हुआ संबंध संसार में बहुतों से है, इस माने हुए संबंध का सदुपयोग करो, मान्यता के अनुसार कर्तव्य पालन करो और प्रेम के लिए केवल परमात्मा को अपना नित्य संबंधी मानो। तो पहला कदम हो गया। दूसरी बात क्या होगी कि केवल उसी का स्वतंत्र अस्तित्व है, उससे भिन्न और किसी का अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये समग्र जगत सहित अपने पास जो कुछ अपने को दिखाई दे रहा है ये सब उसका है। तो परमात्मा है, उसी से अपना नित्य संबंध है और अपने सहित सब कुछ उसका है। तीन बातें हो गई। अभी तक कोई खतरा नहीं है, अभी तक हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह सुरक्षित हैं। परमात्मा है इसको मानने से इनकार नहीं कर सकते हम, और यहाँ संसार में चूंकि हमारा संबंध सदा के लिए निभता नहीं है, बनता है और टूटता है, इसलिए यहाँ के संबंधों को तो नित्य हम कह ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, किसी न किसी में से हम निकले हैं, तो उसी के साथ हमारा नित्य संबंध है, उसी से हमारा अटूट संबंध है। और मेरी आवश्यकता ऐसी है कि मुझको ऐसा नित्य साथी चाहिए कि जिसका साथ कभी भी छूटे नहीं, जिसके जिस वियोग में मुझे कभी भी निराधार नहीं होना पड़े, ऐसे नित्य संबंधी की आवश्यकता मनुष्य मात्र अनुभव करता है। और इसी के उत्तर में संत जन हम लोगों को सलाह देते हैं कि भाई इस बनने बिगड़ने वाले संसार में तुमको नित्य साथी कोई नहीं मिलेगा। हम लोगों के साथ क्या है, तो हम लोगों को अभी उस चिर पुरातन संबंध की याद नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता है। तो गुरु के वाक्य में श्रद्धा करके, ग्रंथ के वाक्यों में विश्वास करके, अपने जीवन के अधूरेपन को मिटाने की आवश्यकता अनुभव करके हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। चिर पुरातन संबंध सदा सदा के लिए, यह शरीर जब उत्पन्न हुआ उसके पहले भी परमात्मा मेरे नित्य संबंधी थे, और जब ये शरीर चिता पर जलता हुआ होगा तब भी वह मेरा नित्य संबंधी मेरे साथ रहेगा। इस सत्य को स्वीकार करके सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय हो जाना, यह है भक्ति पंथ के साधकों का पहला पुरुषार्थ है। आगे क्या होगा, आगे बहुत अच्छी बात होती है, ज्यादा कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता। एक बार गुरु के वाक्य में आस्था करके, मैले कुचैले विकारों से भरे दुखी रोगी शरीर जो भी कुछ है सब ले करके उस अनंत सामर्थ्यवान के समर्पित हो जाने के बाद फिर अपनी ओर न देखना चाहिए, न अपनी योग्यता और विशेषता की चिंता करनी चाहिए, कुछ नहीं। उसके समर्पित हो करके आप बिल्कुल अपने को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे में से कई बार हे प्रभु, यह सृष्टि तुम्हारी है, इसकी सेवा का अवसर दिया आपने, ऐसा याद करके अगर किसी प्यासे को एक ग्लास जल पिला दिया तो ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर जो है, ये स्थूल शरीर जो है, ये पवित्र हो गया। जब मैं छात्रावास में थी, पढ़ाई के दिनों में हॉस्टल में जब रहती थी और बीमारों की सेवा में कुछ कुछ काम करने की रुचि थी, ऊंचे जीवन जीने की लालसा बचपन से थी, तो जहाँ जो सूझे सो करती ही रहती थी। तो रामकृष्ण मिशन के एक डॉक्टर हम लोगों के छात्रावास में आते थे, बुलाया जाता था उन्हीं को, बड़े ऊंचे अच्छे संत थे, भक्त थे, आते थे। तो जहाँ देखें वहाँ जिस रोगी के पास वो जाएं देखने के लिए, तो मैं वहाँ खड़ी हूँ, टेम्परेचर लेकर नोट मैंने कर रखा है, उसको क्या तकलीफ है सो मुझे मालूम है, हमको बुलाया जा रहा है, बताओ बताओ इसका सुनो। तो दो चार बार दस बार देखा होगा उन्होंने। तो एक दिन ऐसे दोनों हाथ हमारे पकड़ लिए और पकड़ के कहने लगे कि इस बच्ची का ये हाड़ मास का हाथ जो है ये तो पवित्र हो गया। बहुत पहले की बात है, 8th-9th class में पढ़ती थी मैं तब हाई स्कूल में। तो तब से मुझको याद है कि भाई इतना ही अगर संसार के प्रति कर सको, बहुत बड़ी बात तो देंगे परिस्थिति वो परमात्मा या अपने आप अपनी सृष्टि की सेवा कराने के लिए तो हम लोग करेंगे। अगर बहुत ही सामान्य परिस्थिति के व्यक्ति आप हैं और बहुत बड़ी बड़ी सेवा का कार्य नहीं कर सकते हैं तो उससे कुछ नहीं घटेगा। अगर शरीर भी नहीं चल रहा है तो हृदय से ही मनाओ, हे प्यारे प्रभु की प्यारी सृष्टि तुम आबाद रहो, हे संसार तुम्हारा कल्याण हो। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के संत आए तो उनको भी कुछ दिखा होगा, बच्चियों में थी मैं, तो उन्होंने मुझको बुलाया अपने पास बैठाया और हेडमिस्ट्रेस से कहने लगे कि इस लड़की को मैं कुछ सिखाऊं। तो उन्होंने कहा कि सिखाइए महाराज, आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी कुछ अनुभव हो रहा है तुम्हें? तो मैं बहुत ही उग्र प्रकृति की थी, सहज से किसी बात में आने वाली नहीं, तो मैंने कहा नहीं नहीं हमको कुछ नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर तक उन्होंने चेष्टा की प्रभाव डालने की, कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बड़ा पक्का विचार मालूम होता है, भविष्य इसका कल्याणमय होगा, कह करके आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि देखो दुनिया में अगर कुछ न कर सको तुम तो जहाँ कहीं किसी दुखी पर दृष्टि पड़े, किसी पर दृष्टि पड़े तो तुम हृदय से ये भाव ही प्रकट करना कि हे संसार तुम्हारा कल्याण हो, हे प्रभु तुम दुखी का दुख दूर करो। तो केवल इतनी सी सद्भावना के बल पर ही हमारा जन्म जन्म का अशुद्ध चित्त शुद्ध हो सकता है। तो संसार निसार है लेकिन जब तक हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना तब तक इसको बेकार मत कहना। समझ में आता है? निसार है, रहने वाला नहीं है, बन गया है, बदल रहा है, मिट जाएगा, लेकिन जब तक मेरा ज्ञानेंद्रियों से तादात्म है, अभी टूटा नहीं, टूट जाएगा तब तो एक अकेला स्वस्वरूप ही रह जाएगा, एक से भिन्न किसी के अस्तित्व का भास ही नहीं होगा। तो जब उस उच्चता पर हम पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। साधना तो आज आरंभ करनी है वर्तमान में। तो इस वर्तमान में संसार दिखाई दे रहा है अपने लोगों को, तो इसको निहसार तो हम जानते हैं, निहसार जानना, परंतु बेकार मत मानना। ये दिख जो रहा है ये आपको ऊंचे उठाने में सहयोगी हो सकता है। कैसे? कि इससे लेने की कामना छोड़ करके जो देने के लायक हो देना आरंभ कर दो। और कुछ भी तुम्हारे पास बचा नहीं देने के लिए, न शरीर में बल रहा न धन संपत्ति रही, ये कुछ भी नहीं रहा, तो हृदय का सद्भाव तो नहीं घट गया जी? उसमें महंगाई से कोई बाधा पड़ जाएगी जी? नहीं पड़ेगी। तो हृदय से भला मनाओ, इतनी सी बात है। और फिर जुट जाओ अपने उस नित्य साथी के साथ, उस अनंत परमात्मा के साथ, उस प्रेम सागर के साथ जुट जाओ। तो उन्हीं के नाते संसार की ओर कल्याणमयी भावना से दृष्टिपात करो और उन्हीं के नाते इस ओर से आंखें बंद करके थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनकी शरणागति लेकर शांत हो जाओ। यहाँ तक आपको कोई कठिनाई नहीं है। इतना सा साधन हर भाई बहन जिसकी इच्छा हो प्रेम तत्व के विकास की वो अपना सकता है। अब आगे चलें, क्या होता है कि मनुष्य के भीतर एक जीवन तत्व है। केवल शरीर के द्वारा अपने को मत देखिए, शरीरों से भी ऊंचा अविनाशी अभौतिक अलौकिक एक तत्व आपके भीतर है। तो उसमें प्रेम बीज रूप से विद्यमान है। उसमें ज्ञान का प्रकाश है। जिस समय मनुष्य संसार को पर जान करके इसके आश्रय को छोड़कर उस नित्य संबंधी परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता है, अपने द्वारा स्वीकार कर लेता है, उसी समय उसके सूक्ष्मति सूक्ष्म अहम रूपी अणु में एक परिवर्तन आरंभ होता है। पहले क्या था, तो आंखें खोलो तो विविध रूप आकृति दिखाई देगी, और आंखें बंद करो तो भीतर घोर अंधकार हो जाएगा। ये है स्थूल शरीर के साथ जुट करके रहने का परिणाम। और अब आपने बहुत ही सहज भाव से, बड़ी ही सरलता के साथ, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी विद्वता के, बिना किसी जप तप के, केवल जीवन की निराधार अवस्था को अनुभव करके उस अनंत परमात्मा को अपना आधार स्वीकार कर लिया और उसकी शरणागति लेकर रहना आपने पसंद किया। केवल इतने मात्र से उस अहम रूपी अणु में एक विचित्र परिवर्तन होता है, विलक्षणता आती है। और मैंने तो बड़ी ही कठोरता के स्तर से आरंभ किया था, सूक्ष्म से सूक्ष्म विकास जो ईश्वर विश्वास के आधार पर होता है उसका थोड़ा थोड़ा सा रिपोर्ट मेरे पास है। आदत थी इंट्रोस्पेक्शन की, अपने आप से दिखता रहता था, अभी भी दिखता है। वो मैं सेवा में निवेदन कर रही हूँ कि बाहर से कोई परिश्रम पराश्रय लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने उस अनंत परमात्मा की शरणागति स्वीकार किया और 5-10-20 मिनट का समय निकाल करके थोड़ी थोड़ी देर के लिए निरहंकार होकर, कर्तृत्व का अभिमान खोकर, माता पिता की गोद में जैसे शांत रहते हैं वैसे छोड़ दीजिए अपने को। तो आप काले हैं, कलूटे हैं, अपराधी हैं, बहुत कामी हैं, क्रोधी हैं, कुछ चिंता की बात नहीं है। उनमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि उनकी कृपा वृष्टि से ये सब शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मिट जाएगा। तो उनकी महिमा में विश्वास करो, उसकी प्रधानता रखो और अपनी नालायकी को भूल जाओ, जरूरत नहीं है उसको देखने की। तो अहम रूपी अणु में एक ऐसा विलक्षण परिवर्तन होता है कि पहले आपने गुरु के कहने से माना था कि तुझी में तेरा प्रेमास्पद है। संत कबीर ने कहा, तेरा साही तुझ में जिमिपुपन में बास, पुष्पों में जैसे सुगंधी होती है ऐसे ही तुम्हारे ही में परमात्मा है। तो गुरु ने कहा था कि तुम्हारा परम प्रेमास्पद तुम्ही में है। गुरु के कहने से आपने सुन लिया, मान लिया। मानने के बाद आपके भीतर भाव की ऐसी आंखें खुलती हैं कि अपने ही में उस परम प्रेमास्पद का दर्शन होने लगता है। किया नहीं जाता, मानव सेवा संघ की पद्धति में प्रयास करके, अभ्यास करके इष्ट का चित्र ध्यान के केंद्र में लाने की बात सिखाई नहीं जाती। स्वामी जी कहते कि तुम अगर अपनी ओर से बनाओगे तो तुम्हारी कल्पना का चित्र बनेगा। मुझको बहुत सावधान किया उन्होंने, देवकी जी भगवान का कार्टून मत बनाना दिमाग में। सुना हुआ रहता है ना, प्रभाव रहता है, भगवान चतुर्भुजी हैं, भगवान द्विभुजी हैं, भगवान धनुषधारी हैं, भगवान मुरली मनोहर हैं, तो अष्टभुजा महाशक्ति हैं, ये सब सुनी हुई बातों का प्रभाव होता है। तो जिसको जिसको जो रूप पसंद आता है उसी के अनुसार वो मस्तिष्क में भगवान का चित्र बनाना पसंद करता है। तो महाराज ने बार बार मुझको समझाया कि देवकी जी तुम कार्टून दिमाग में मत बनाना, तुम्हारा बनाया हुआ बन जाएगा और अपने आप से बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम बनाना मत, तुम अपने को समर्पित करके छोड़ दो। जो रूप तुम पसंद करती हो और जिस रूप के दर्शन से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, जिसमें तुम्हारी लगन लग सकती है, ये बात तुमको मालूम नहीं है लेकिन उनको मालूम है। तुम अपने को छोड़ दो। वे परम प्रेमास्पद, वे हम सबके हित चिंतक, अपने से अधिक अपने हित की चिंता उनको है, अपने से अधिक अपने उद्धार की बात उनके शुद्ध संकल्प में है। तो वे सत्य संकल्प, वे शुद्ध संकल्प, वे परम हित चिंतक, वे जगत पिता जगत जननी अपनी ही करुणा से अभिभूत होकर तुम्हारा सुधार आरंभ करेंगे। तो इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा, प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति की ऐसी अजस्र धारा फूट पड़ेगी कि जिसे तुम संभाल नहीं सकोगी। सीमित अहम भाव उसमें गल जाएगा और कब तुम और वे दोनों मिलकर एक हो गए, उस क्षण की कोई पहचान नहीं रहेगी। अब शांत हो जाए। ओम श्री हरि शरण। मैंने कहकर सुना दिया, आपने आभार प्रदर्शित कर दिया। हमारे आपके मिलन का अंत नहीं हो गया। हम सभी एक एक ज्वलंत यूनिट हैं उस अनंत तत्व के, उस अविनाशी जीवन की किरणें हैं हम। जहां भी रहें, शरीर से अलग तो सदैव ही हैं, लेकिन हम सभी उस प्रेम नगर के पथिक, कभी भी एक दूसरे से भाव में अलग नहीं होंगे। साधना की घड़ी में, शांति के क्षणों में, बाहरी कठिनाइयों की उलझन में, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। प्रार्थना में हम सब एक दूसरे के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जब कभी एकांत का अवसर मिले, उस प्रभु की कृपा की भिक्षा सबके लिए मांगें। और यह क्रम हमारा, यह अनंत मिलन हमारा, यह पथ का पाथे हमारा, तब तक साथ देता रहे सभी भाई बहनों को, जब तक हम जाकर अपने उस अनंत जीवन में समाहित न हो जाए।
सच्चा त्याग आ जाने पर पूर्व कर्मों का फल भी बदल जाता है, क्योंकि सच्चा त्याग वास्तव में मृत्यु के समान है। अर्थात त्याग से जीवन में ही मृत्यु तथा नवीन जीवन मिल जाता है। अतः प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध तोड़कर सब प्रकार से सद्भाव पूर्वक प्रेम पात्र की हो जाओ।